من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ایک مرتبہ ایک صاحب نے میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ ان سے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری روحانیت میں ترقی ہو جائے، یہ روحانیت کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، تو حضرت نے ان سے پوچھا تو میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہلے روحانیت کو ذرا ڈیفائن کر دوں کہ روحانیت کس چیز کو کہتے ہیں، کیونکہ ایک صاحب میرے آئے تھے تو ہمارے ہاں وہ جو کنسٹرکشن میں مکسچر مشین استعمال ہوتی ہے تو وہ مشین رکھی ہوئی تھی اور میں باہر واک کر رہا تھا تو وہ صاحب میرے ساتھ تھے تو کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر روحانیت پیدا ہو جائے، تو مجھے کچھ اندازہ ہوا کہ یہ روحانیت کو سمجھتے نہیں ہیں، تو ان سے میں نے پوچھا کہ روحانیت کس کو کہتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ مثلا یہ کہ یہ جو مشین ہے میں اس کو اٹھا لوں اور ہیں بھی باڈی بلڈر، وہ باڈی بلڈنگ کرتے تھے، تو میں نے کہا بھائی روحانیت اس کا نام نہیں ہے، کیونکہ وزن اٹھانا یہ روحانیت نہیں ہے، وزن تو گدھا بھی اٹھاتا ہے لیکن گدھے کا کیا حال ہوتا ہے وہ بھی سن لیں۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے سنایا کہ ایک شخص تھا جو نمک کی تجارت کیا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ اس کا جو رستہ گزرتا تھا بیچ میں ایک ندی پڑتی تھی، اس ندی میں سے اتر کر جانا پڑتا تھا، پل بنا ہوا نہیں تھا، نہ پل بنا ہوا تھا، نہ فلائی اوور، نہ انڈر پاس، اس لیے بےچارے کو ایسے ہی پاس کرنا پڑتا تھا۔ تو سیلاب کا زمانہ تھا، پانی میں تیزی تھی، تو نہ گدا جب پانی میں اترا تو اس کا پاؤں پھسلا تو نتیجہ یہ ہوا کہ پانی میں گرا اور سارا نمک ضائع ہو گیا۔ اب جب وہ گدا ندی سے باہر نکلا، پانی سے باہر نکلا، تو اس نے دیکھا دو من بوجھ جو تھا وہ بالکل نہیں ہے، تو بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ ادھر مالک نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یعنی جیسے کوئی چیز ٹوٹ جائے، کوئی چیز چوری ہو جائے، موبائل گر گیا، چوری ہو گیا خدا نہ خواستہ، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے، یہ سنت ہے، اور پھر اس مصیبت پر اجر ملتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی آدمی کو 20 برس پرانی، 10 سال پرانی کوئی بات بھی یاد آ گئی جو غم کی اور مصیبت کی تھی، اگر اس نے ابھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تو اس پر اس کو اجر ملے گا۔ اگلے دن مالک پھر نکلا، دو من نمک گدھے پر لادا، گدھے کو کل والی بات یاد تھی، تو اس نے کیا کہ جان بوجھ کر اپنا پاؤں پھسلایا، اب گرا تو وہ نمک سارا گر گیا، خیر مالک باہر اب نکلا تو دیکھا سب نمک ضائع، اس نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر اس نے کہا یار کل تو چلو پاؤں پھسلا لیکن آج پاؤں پھسلنا دوبارہ، یہ کچھ گدھے کی شرارت معلوم ہوتی ہے، ذرا میں اس کو چیک کرتا ہوں۔ اگلے روز اس نے کیا کیا کہ گدھے پر بجائے نمک کے روئی لاد دی، اب گدھا تو گدھا ہوتا ہے، پانی میں جانے سے پہلے اس نے آواز خوشی سے نکالی، پانی میں جا کر پھر پاؤں پھسلایا، اب اس کو نمک اور روئی کا فرق تو نہیں پتا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو روئی ہوتی ہے وہ پانی کو ایبزارب کر لیتی ہے، और जब पानी को एब्जॉर्ब करती है तो उसका वेट और वजन बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम तो कम हो जाता है, वेट बढ़ जाता है। नतीजा ये हुआ कि गधा गधा था, उसने फिर डुबकी लगाई और अब जब वो पानी में तो काम चल गया, जब पानी से बाहर निकला तो वो पानी ने चूके रुई ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया था, चूस लिया था, ले लिया था। अब वो नतीजा हो कि गधे से पांव ना उठाया जाए, तो मालिक ने उसके कान में कहा कि बेटा याद रख तू गधा है, गधों की तरह जिंदगी गुजार। तो मेरे दोस्तों वजन गधा उठाता है। रूहानियत इसका नाम नहीं है कि वजन उठा ले, रूहानियत इसका नाम नहीं है कि उड़के दिखाए, और रूहानियत इसका नाम नहीं है कि जमीन के अंदर घुस जाए, ये रूहानियत नहीं है। क्योंकि मक्खी भी उड़ती है और जमीन में छछूंदर और चूहा भी घुस जाता है, बल्कि गटर में घुस जाता है। और वजन उठाना ये गधों का काम है, ये रूहानियत नहीं है। तो फिर रूहानियत क्या है? रूहानियत को निस्बत भी कहते हैं, ताल्लुक माल्ला भी कहते हैं। और निस्बत किसका नाम है? मेरे शेख के शेख थे हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि निस्बत इसी का नाम है, निस्बत इसी का नाम, निस्बत इसी का नाम है, निस्बत इसी का नाम कि उनकी गली से आप निकलने ना पाइए। यानी रूहानियत नाम है बंदे का अल्लाह ताला से ऐसा ताल्लुक और रिलेशन पैदा हो जाए कि वो हर लम्हा हर सांस अल्लाह ताला को राजी और खुश रखे। अब चाहे वो अल्लामा इकबाल टाउन नीलम ब्लॉक में हो, चाहे माल रोड पर हो, और चाहे कभी उसको लिबर्टी जाना पड़े। और मस्जिद में हो, घर में हो, हर जगह वो उसका अल्लाह ताला से ऐसा ताल्लुक हो कि वो अल्लाह ताला को राजी और खुश रखे और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करे, इसको रूहानियत कहते हैं। समझ में आई ना? इसका नाम है रूहानियत, और इसको निस्बत भी कहते हैं कि बंदे का अल्लाह ताला से ताल्लुक इताअत और फरमाबरदारी का, कि बंदा अल्लाह ताला की बात माने, और अल्लाह ताला का बंदे से ताल्लुक इनायत और मेहरबानी का, कि अल्लाह ताला उस पर फज़ल और मेहरबानियां फरमाते। जैसे कुरान पाक की जो आयत मैंने पढ़ी, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा, कि जिसने आमल सालेह किया यानी नेक आमाल किए, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, लेकिन वह हुआ मोमिन, वो मोमिन हो, तो अल्लाह ताला फरमा रहे फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसे जरूर बिल जरूर एक बालुत्फ और पाकीजा जिंदगी देंगे। और वो जिंदगी ऐसी होगी, आप हजरात ने बुजुर्गों के वाकयात सुने हैं कि अल्लाह वाले ऐसे होते हैं कि जो बादशाहों को खातिर में नहीं लाते, ऐसी बातें सुनिए ना, अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जो मालदारों को खातिर में नहीं लाते, अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जो कुर्सी से और ओहदों से बिकते नहीं है, और वो अल्लाह वाले ऐसे होते हैं कि किसी के हुस्न से मरऊब नहीं होते, अगर वो मर्द है तो किसी औरत से बिकता नहीं है, और अगर वो औरत है तो किसी मर्द के गुनाह की दावत पर राजी ना हो, ऐसी बातें सुनिए ना, ऐसे वाकयात, ये क्या बात है? दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत जो कि सारे आलम की लज्जतों को पैदा फरमाने वाले हैं, जब किसी को अल्लाह ताला, मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिस दिल को अल्लाह ताला मोहब्बत और प्यार की निगाह से देखते हैं उसकी फरमाबरदारी की वजह से, तो उसके दिल को ऐसा मुस्तगनी फरमाते हैं कि वो बादशाहों को खातिर में नहीं लाता, क्योंकि अल्लाह ताला बादशाहों को बादशाहत की भीख देता है, मालो दौलत वालों को मालो दौलत भी अल्लाह अता फरमाते हैं, हसीनों को हुस्न भी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, और सारे आलम की लज्जतों के खालिक भी अल्लाह ताला है। इसलिए जिसके दिल को अल्लाह ताला प्यार से देखते हैं और अपना कुर्ब और रूहानियत अता फरमाते हैं, फिर वो किसी से मरूब नहीं होता और बिकता नहीं है। तो वो रूहानियत का पूछा गया, हजरत मैं अपनी रूहानियत में तरक्की कैसे करूं और मैं चाहता हूं मेरी रूहानियत उड़ जाए, तो हजरत ने फरमाया रूहानियत को उड़ाने का तरीका वही है जो जहाज को उड़ाने का तरीका। कहा हजरत वो कैसे? फरमाया जहाज को उड़ाने के लिए तीन काम करने होते हैं। नंबर एक ही के पायलट चाहिए और पायलट भी जिंदा चाहिए और पायलट राशिद मिन्हाज निशाने हैदर शहीद है, निशाने हैदर ले लिया, लेकिन अगर कहे के अब राशिद मिन्हाज की कब्रों से फैज आएगा तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा जहाज जिस पर कोई पायलट ना हो कोई नहीं बैठेगा उस पर। और पायलट बनता है, पायलट बनता है पायलट की सोबत से, यानी जितने पायलट है वो पहले को पायलट बनते हैं, यानी जितने एमबीबीएस डिग्री होल्डर हैं उनके लिए मस्ट और जरूरी है कि वो अपनी थ्योरी के बाद एक साल हाउस जॉब भी करें तब उनको डिग्री दी जाती है। यहां तक कि अगर कोई ये कह भी दे कि मेरे पास हाउस वाइफ भी है और मैं अपने हाउस में हाउस कीपिंग भी करता हूं, लेकिन फिर भी उसको हाउस जॉब करनी होगी, ऐसा ही है ना भाई, तब उसको डिग्री मिलती है। तो पायलट भी पहले को पायलट बनता है, इंजीनियर पहले ट्रेनी बनता है, हर चीज में पहले ट्रेनी, ट्रेनी इंस्ट्रक्टर होता है, ट्रेनी इंजीनियर होता है। जब वो पहले ट्रेनी बनता है फिर उसके बाद वो सीनियर हो जाता है। तो पायलट भी पहले को पायलट बनता है फिर पायलट बनता है। तो पायलट होना चाहिए नंबर एक। नंबर दो ये कि उसका जो फ्यूल टैंक है वो फुल होना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त जहाज में जितनी मटेरियल है, जितनी चीजें हैं, वो सब की सब जमीन की चीजों से बनी है, जैसे लोहा है, तांबा है, रबर है, ये सब जमीन है। लगा जहाज को जमीन को छोड़ने के लिए, कि जमीन से दूर हट जाए, जमीन को छोड़ने के लिए जिसे वो टेक ऑफ करता है उस वक्त उसको जो है ना सबसे ज्यादा जो उसकी एनर्जी कंज्यूम होती है वो उसी वक्त होती है, जिस वक्त जमीन जो टेक ऑफ कर रहा होता है सबसे ज्यादा एनर्जी उसी वक्त कंज्यूम होती है। और जब एक दफा वो हवा में पहुंच जाता है तो अगर चार इंजन है उसमें से एक इंजन या दो इंजन बंद कर देते हैं, फिर जहाज जो है वो हवा के कंधों पे चलता रहता है, क्योंकि जहाज के तमाम अज्जा जमीन के। इस वजह से जहाज को जमीन से छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। दूसरा, ये जहाज का टैंक फुल होना चाहिए। नंबर तीन, तीसरी बात यह है कि जहाज के टैंक की हिफाजत भी की जाए। लगा जहाज जहां पर खड़े होते हैं आप देखते हैं चारों तरफ सिक्योरिटी होती है, यहां तक के एयरपोर्ट पर जो रनवे होते हैं वहां शूटर बैठे होते हैं। उन शूटर का काम, क्योंकि जहाज ऐसा है कि अगर जहाज का एक परिंदा भी आ गया तो इतना बड़ा जहाज उस पर अगर परिंदे से टकरा गया, अक्सर न्यूज़पेपर और अखबारों में आप ये खबर पढ़ते रहते हैं कि परिंदा जहाज से टकरा गया जिसके वजह से जहाज उड़ ना सका या जहाज गिर गया, ये मालूम है ना बात। हालांकि परिंदा जहाज के, अगर परिंदे का रेशियो जहाज के साथ निकाला जाए तो बिल्कुल पॉइंट्स में आएगा, लेकिन वो इतना छोटा सा परिंदा भी जहाज को उड़ने नहीं देता, इसलिए वहां शूटर बैठे रहते हैं जो ऐसे परिंदे अगर उस रेंज में आ जाए, रनवे की रेंज में आ जाए तो वो फौरन उसको मार देते हैं। और साथ ही जहाज के उड़ने के लिए जरूरी है कि ऐसा नहीं कि किसी आदमी को गर्मी लगी उसने खिड़की खोल दी, जहाज में ऐसा नहीं होता कि खिड़की वहां बिल्कुल पैक होता है कि किसी को गर्मी लगी उसने कहा कि जी मैं तो पावे खा के आया हूं और मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो खिड़की खोल दी, कोई खिड़की बंद करेगा कोई खिड़की खोल देगा। और जब वो जहाज 40,000 और 50,000 फीट की एल्टीट्यूड और बुलंदी पर होता है तो वहां माइनस में टेम्परेचर होता है। हाँ, वो किसी को गर्मी लगी कि जी मैं तो फज्जे के पाए खा के आया हूं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और खिड़की खोल दो, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल पैक होता है, एक सुराख की जगह भी नहीं होती है, क्योंकि अगर एक भी सुराख हुआ जहाज उड़ ना सकेगा। अब मेरे शेख और मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिस तरह से जहाज को उड़ाने के लिए पायलट चाहिए उसी तरह से हमारी रूहानियत को उड़ाने के लिए भी पायलट चाहिए, और इस पायलट का नाम है अल्लाह वाले, और शेख और मुर्शिद इसी को कहते हैं। लेकिन अगर जहाज पर बैठे कि जी उम्रे का इरादा है और हमने उम्रा करने के लिए जाना है, तो पायलट जो है वो जद्दा वाला होना चाहिए या मदीना मुनव्वरा वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मॉस्को के जहाज या फ्रांस के जहाज पर बैठ गए, अब वो पेरिस ले गया या लंदन ले गया या ऑस्ट्रेलिया ले गया या हांगकांग ले गया या चाइना रशिया ले गया। हमें तो जद्दा जाना है कि वहां पर जगह जाकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगानी है। अब हाजी बैठा जद्दा जाने के लिए, पता चला जहाज किडनैप हुआ और कहीं और पहुंच गया। इसलिए पायलट को भी देखना है कि वो जद्दा का रास्ता जानता हो, और देखा जाता है कि किस जहाज पर हम बैठ रहे हैं। इसी तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों, मुर्शिद और अल्लाह वाले को जब सेलेक्ट किया जाता है, इंतखाब किया जाता है, तो जरूरी है कि पहले देखे कि वो भी शरीयत और सुन्नत पर चलने वाला है कि नहीं है। शरीयत और सुन्नत पर चलने वाला हो, ऐसा है, ऐसा नहीं कि वो तो जनाब शरीयत और सुन्नत पर चलते नहीं है। जो खुद शरीयत और सुन्नत पर नहीं चलता, हमें क्या चलाएगा। अब आपके इंस्टीट्यूट में क्या ऐसा होता है कि जिसने एमएससी फिजिक्स किया हो, जिसने एमएससी फिजिक्स किया हो वो केमिस्ट्री पढ़ाए, है आपके इंस्टीट्यूट में ऐसा? और जिसने एमएससी केमिस्ट्री में किया है और वो बायोलॉजी पढ़ा रहा है, और जिसने बायोलॉजी में डॉक्टरेट कर लिया, एमफिल कर लिया, वो बायोलॉजी में डॉक्टरेट एमफिल करने वाला, उसको जो है वो केमिस्ट्री पढ़ाने पे लगा दिया जाए या मैथमेटिक्स दे दी जाए, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। तो इसी तरीके से एक आदमी जब शरीयत और सुन्नत पर खुद अमल नहीं करता, वो कैसे हमें सिखाएगा। जो खुद नहीं जानता वो क्या सिखाएगा। इसलिए जरूरी है कि वो भी जिसके पास हम हैं, उसके पास वो अल्लाह ताला की मोहब्बत रखता और शरीयत और सुन्नत पर अमल करता हो, वो बहुत जरूरी है। और उसको पता कैसे चलेगा, देखिए ये जो इंस्टीट्यूट है इसका नाम है सब लाइन, है ना। मैंने इनसे कहा, मौलाना से कहा, मौलाना आसिफ साहब से, इसका नाम सब लाइम के बजाय लेमन एंड लाइम रख दे। ताकि और जरा एंजॉय, लेमन एंड लाइम का अपना मजा है। तो किसी इंस्टीट्यूट जो जब कोई जाता है किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, तो हमेशा उसकी रेपुटेशन देखी जाती है, और ये देखा जाता है कि लगा इंस्टीट्यूट वाले लिखते हैं कि हमारे फला स्टूडेंट ने 2014 में या 2013 में या 12 में या इसमें, या फेडरल बोर्ड चलता है, लाहौर बोर्ड, लाहौर बोर्ड, लाहौर बोर्ड में मैट्रिक के अंदर टॉप किया, पोजीशन होल्डर है, फर्स्ट पोजीशन ली या सेकंड पोजीशन ली या थर्ड पोजीशन ली, इंस्टीट्यूट वाले लिखते हैं ना ऐसे, और बताते थे कि जी हमारे यहां हमारा जो स्टूडेंट है उसने जो है फर्स्ट पोजीशन या सेकंड या थर्ड पोजीशन ली। तो ये पोजीशन उस इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन को बताती है, नंबर एक। नंबर दो, वहां के स्टूडेंट बताते हैं, स्टूडेंट बताते हैं कि जी वहां के स्टाफ, वहां का टीचिंग स्टाफ, वहां के इंस्ट्रक्टर्स वो बहुत फ्रेंडली हैं और वो बहुत केयरिंग है, और हमारे लिए वहां जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही फ्रेंडली है, हम कोई बात पूछते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाते हैं। तो ये जो चीज है, स्टूडेंट जाकर उस इंस्टीट्यूट की गोया के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो इसी तरह से किसी अल्लाह वाले को अगर देखना हो कि वो कैसा है, तो उसके शागिर्दों से पता चलेगा कि अगर उसके शागिर्द शरीयत और सुन्नत पर अमल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो भी सच्चा अल्लाह वाला है, शागिर्दों से पता चलता है। लिहाजा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सूरह फतह के अंदर आखिरी आयत है, आगे अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई तारुफ नहीं कराया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शागिर्दों का तारुफ कराया। والذين معه وشد على الكفار وحماوا بينهم, पूरी आयत के अंदर सहाबा रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का तारुफ कराया, और उनकी शान आली, उनकी शान मर्तबत और उनकी बुलंदियों को बयान किया कि मेरे रसूल के सहाबा ऐसे हैं। इससे क्या पता चला, जब शागिर्द ऐसे हैं तो उस्ताद का क्या हाल होगा। कि जब सहाबा रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, उनकी शान इतनी आली शान है, इतने जबरदस्त है, तो उस्ताद कैसा होगा? लगा किसी इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं उससे पता चलता है कि इस इंस्टीट्यूट में जो एजुकेशन दी जाती है उससे डेंट तो नहीं लगता। अगर डेंट लगा हुआ है तो पता चल जाएगा। लगा शागिर्द बताएंगे कि उस्ताद कैसा होता है। लगा किसी के देखना हो किसी अल्लाह वाले को, तो उसके शागिर्द और उसके मुरीदों को देखे कि ये लोग शरीयत और सुन्नत पर चलने वाले हैं कि नहीं है, अपने माँ बाप के हुकूक का ख्याल रखते हैं कि नहीं है, और अपने जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं कोई औरत कोई लड़की सामने आ गई तो नजर की हिफाजत करते हैं कि नहीं है, जब अगर इनको कोई छेड़े गुस्सा दिलाए तो ये गुस्सा बर्दाश्त करते हैं कि नहीं है, इससे पता चलेगा। तो पायलट वो क्या है? अल्लाह वाला शेख। और पायलट के जरूरी है कि उससे भी पूछे कि भाई साहब आपने किस इंस्टीट्यूट में पढ़ा है। वो कहे कि मुझे जो है राशिद मिन्हाज साहब ख्वाब में आकर उन्होंने जो है वो पायलट इंजीनियरिंग पढ़ाई है, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग मैंने जो पढ़ी है वो राशिद मिन्हाज साहब वो ख्वाब में आकर वो मुझे स्काइप पर सारी बातें समझाते थे और व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और वाइबर पर मेरी राशिद मिन्हाज शहीद से रोजाना बात होती है, इसलिए मुझे उनसे निस्बतें वैसी हासिल है। तो ऐसे ऐसे पहले चूंकि जहाज पर बैठेंगे भाई, तो इसी तरह से पूछे कि भाई आपका उस्ताद कौन है, क्योंकि उस्ताद से पता चलता है, उस्ताद सही रास्ते पर होगा तो शागिर्द भी सही रास्ते पर होगा। तो ये हो गया नंबर एक शर्त पायलट की। नंबर दो शर्त क्या कही मैंने कि जो फ्यूल टैंक है वो फ्यूल टैंक जो है फुल होना चाहिए। तो इसी तरीके से अब ये जो हमारा कल्ब व जान का फ्यूल टैंक है ना, ये अल्लाह ताला के नूर से फुल होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह जहाज, ये सिर्फ को पंखा चला दो ना, ये तो ऐसा बिल्कुल जहाज वाला माहौल बनाया हुआ है मौलाना आसिफ साहब। मैंने कहा ये तो बिल्कुल जहाज वाला माहौल बनाया हुआ है, खिड़की भी बंद की हुई है, पंखा भी बंद किया हुआ है, इसीलिए एयर होस्ट को कहा जा रहा है, इंस्टीट्यूट हाउस को कह रहा है भाई पंखा तो चला दो, साढ़े नाल की कर रहे हो तुसी जी। तो जिस तरह से जहाज को, चूंकि जहाज के जितने जिस मटेरियल है, अच्छा एक मसला याद रखिएगा, हमारे यहां साइंस जब पढ़ाई जाती है तो साइंस में बहुत सारी चीजों में कहते हैं कि फला शख्स इस चीज का क्रिएटर है, तो याद रखिएगा क्रिएटर सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, क्रिएशन सिर्फ अल्लाह ताला का काम है, इन्वेंशन ईजाद करना ये बंदे कर सकते हैं, लेकिन क्रिएशन यानी तखलीक उर्दू में कहते हैं, अरबी में कहते हैं तखलीक, याद रखिएगा सिफत तखलीक सिर्फ अल्लाह के लिए खास है। अब अगर कोई साइंसदान कहे कि मैंने समुंदर से नमक तखलीक किया है तो मेरे मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये खालिक नमक नहीं है बल्कि चोर है चोर, क्योंकि समुंदर में नमक तो अल्लाह ताला ने पैदा किया, इसने वहां से निकाला, लगा इस निकालने को क्रिएशन नहीं बोलते, लगा इन्वेंशन और प्रोडक्शन तो कह सकते हैं आप उसको, मखलूक के लिए इन्वेंशन और प्रोडक्शन का वर्ड तो यूज किया जा सकता है लेकिन मखलूक के लिए क्रिएशन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हो सकता, खालिक सिर्फ अल्लाह है। हां मखलूक को कह सकते हैं प्रोड्यूसर साने या इन्वेंटर, किसी चीज को ईजाद करना, या एक्सप्लोरर उसको एक्सप्लोर कर लेना और दरियाफ्त कर लेना, मखलूक ये काम कर सकती है, लेकिन क्रिएशन सिर्फ अल्लाह ताला की सिफत है और उन्हीं की क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक है बस ये। तो जहाज फरमाया कि चूंकि जमीन के अज्जा से बना है, मटेरियल से बना है, तो इसलिए उसको जमीन छोड़ने में फ्यूल बहुत चाहिए। इसी तरह से हमारे भी जो अज्जा है ना, ये अज्जा भी मिट्टी और पानी से बने हैं। हमारे अज्जा भी यानी हम इंसान भी मिट्टी से बना है ना, अब मिट्टी की चीजों की तरफ हमें अट्रैक्शन होती है, वो क्या? मिट्टी के मकानात, मिट्टी के शामी कबाब बिरयानी, मिट्टी की गाड़ियां, मिट्टी के मर्द और मिट्टी की औरतें, ये सब मिट्टी है। और इसकी दलील क्या है? किसी हसीन लड़के को और किसी हसीन लड़की को, मान लो 18 साल के हैं दोनों, इंतकाल हुआ, दोनों को कब्र में उतार दे, 6 महीने के बाद उनकी कब्र खोलकर देखे तो क्या होगा? मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं होगा वहां। इसलिए इंसान मिट्टी से बना है। लादा हमें भी इस मिट्टी की जमीन को छोड़ने में, जब तक हमारे दिल में खूब नूर ना होगा मेरे दोस्तों, उस वक्त तक हमारी रूहानियत जमीन से उठ नहीं सकती। रूहानियत क्या है? मसलन अब इंस्टीट्यूट से बाहर निकले, अब नमाज का वक्त आया, अजान की आवाज सुन भी रहे हैं, अब मैं नमाज पढ़ता हूं कि नहीं पढ़ता, ये रूहानियत है। अपनी शक्ल कैसी बनानी है, अपना जाहिर कैसा बनाना है, अपना बातिन कैसा बनाना है, ये सब रूहानियत है। और ये रूहानियत की तालीम जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक और अहादीस मुबारका, फिर उनके बाद फुकहा और उलमा ने उसको समझा दिया कि देखो इसके ये माने और ये इसका मतलब है, वो उससे काम आएगा। दादा उसके लिए जिक्रुल्लाह की जरूरत है ताकि नूर दिल में पैदा हो, जिक्र से नूर पैदा होता है। मेरे मुर्शिद का फारसी का शेर है कि नूर हक अज़िक्र हक दर जा रसद, कि अल्लाह ताला का जो नूर है अल्लाह ताला के जिक्र से जान में पहुंचता है। इसकी सप्लाई लाइन क्या है? अज़बा दर दिल, जबान से दिल में जाता है, जे दिल तो जा रसद, और दिल से जान में दाखिल हो जाता है। अब उसके दिल में नूर पैदा हो गया, जब आमाले सालेहा करते हैं, नमाज पढ़ी, जिक्र किया, तिलावत की, इससे नूर पैदा होता है, सुन्नत पर अमल करने से नूर पैदा होता है। अब उसका दिल नूर से भर गया, अब क्या होता? अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज यह है कि उस फ्यूल टैंक की हिफाजत करनी है। नफ्स और शैतान क्या करते हैं? कहते हैं तो अच्छा ये तो मुल्ला बनने वाला है, अरे तुम अभी से दाढ़ी रख रहे हो, तुम्हारी शादी कैसे होगी? आपको मालूम है कि दाढ़ी वाले की शादी पहले होती है बगैर दाढ़ी वाले की? दाढ़ी वाले की या बगैर? दाढ़ी वाले अगर कहते तो हाथ उठाए भाई, दाढ़ी वाले की पहले होती है, माशाल्लाह अक्सर लोग हाथ उठा रहे हैं, तो पता चला कि शादी भी हो जाएगी। लगा नेक बनेगा नेक मिलेगी, नेक बनेगी नेक मिलेगा, नेक बन जाए इंशाल्लाह शादी भी जल्दी हो जाएगी। और रही बात जो अल्लाह ताला सारे आलम को पैदा फरमा सकता है और सारे काफिरों को भी रोटी देता है, कि आपने फरमाबरदारों को 2 रोटी नहीं दे सकता? तो इन आमाल से नूर पैदा होता है। अब ये कहे मुल्ला बनूंगा तो खाऊंगा कहां से? एक साहब ने मुझसे कहा कि ये मुल्ला मुर्गी बहुत खाते हैं, तो मैंने पूछा कि भाई बताओ तुम्हें रिस्क कौन देता है? कहने लगे अल्लाह। मैंने कहा तुम्हारे घर वाले को रिस्क कौन देता है? कहने लगे अल्लाह। मैंने कहा मुल्ला को रिस्क कौन देता है? कहने लगे अल्लाह। मैंने कहा जब अल्लाह ताला मुल्ला को मुर्गा खिला रहा है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? भाई मुल्ला को भी तो अल्लाह ही खिला रहा है ना, तेरा बाप तो नहीं खिला रहा ना, तो क्या तकलीफ है? अब रही बात कि जी अगर खुद कहते हैं कि मुल्ला को मुर्गा मिलता है तो भाई मुल्ला क्यों नहीं बन जाते? ज्यादा मुर्गा खाने को मिलेगा, और हर बाप क्या चाहता है? मेरी औलाद मुर्गे खाए, ये चाहते हैं ना, तो अल्लाह वाला बन जाए। देखो एक होता है इंजीनियर, एक होगा अल्लाह वाला इंजीनियर, एक है डॉक्टर, एक है अल्लाह वाला डॉक्टर। दादा आप जाएं ऐसे मिलते हैं कि नहीं मिलते? माशाल्लाह ऐसे लोग मौजूद हैं। इधर आओ भाई, इधर आओ खड़े हो। देखो एक मुल्ला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जरा जगह दो। ये देखिए ये एक मुल्ला, ये भी देखिए, ये जो मुल्ला है ना, आप पता है किस मस्जिद में इमाम होगा या मुअज्जिन होगा ना, ऐसा है ना? लेकिन मजे की बात है कि ये विहारी के एक स्कूल के प्रिंसिपल है, ये भी मुल्ला है। जाओ भाई इधर आओ, इधर आओ, ये मुल्ला किस मस्जिद का इमाम और मुअज्जिन होगा, इसको भी देख लो। ये भी, ये मुल्ला माशाल्लाह नेटवर्किंग के जो ना स्पेशलिस्ट है, ये भी मुल्ला देख लो, नेटवर्किंग की फील्ड के स्पेशलिस्ट है जो किसी मस्जिद में नेटवर्किंग करते होंगे। ये भी देख लिया मुल्ला। तो देखो पता ये चला कि दीनदारी के साथ आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, अच्छा माशाल्लाह। भाई इधर दिखाओ, भाई इनको भी दिखाओ, आओ भाई प्रिंसिपल साहब इधर आओ जरा, वो बेचारे उन्होंने देखा, देखिए ये एक प्रिंसिपल आपके, ये भी देखो, ये मुल्ला मस्जिद का मुअज्जिन या मुल्ला लगता है ना कि नमाजें पढ़ाता होगा, ये माशाल्लाह प्रिंसिपल है स्कूल में के। और एक नहीं ज्यादा ब्रांच है, दो ब्रांच है, तीन
तीन
तीन ब्रांच है इनकी वहां पे माशाल्लाह। और ये देख लीजिए माशाल्लाह, एक मुट्ठी दाढ़ी शलवार टखनों से ऊपर और माशाल्लाह इसी तरह स्कूल चला रहे। और गर्ल्स का सेक्शन भी है वो अलग है, बॉयज का अलग है, यानी लेडीज अलग है, लेडाज अलग है। इधर आओ, दूसरा भी देख लो, ये नेटवर्किंग के जो आपको मैं दिखा दूं, सैंपल लेकर आया हूं मैं, ताकि आप ये ना कहें कि साहब हम मुल्ला बन जाएंगे तो क्या इंजीनियरिंग भी ना पढ़े, डॉक्टरी भी ना पढ़े, या कोई जो है नेटवर्किंग या जो है वो कोई किसी किस्म का पढ़ नहीं सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते। ये माशाल्लाह देखो मिसालें मौजूद है बैठे। और जो मुल्ला आपसे खिताब कर रहा है, मैं भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी पढ़ चुका हूं, मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर भी हूं, और उसके साथ साथ मैं आईएसओ 9000 का ऑडिटर भी हूं, और साथ में एक मिस्कीन मुल्ला भी हूं। इसलिए मिसाल दे दी भाई कि हम जो समझते हैं कि दीन पता नहीं कैसे होगा, कि साहब उसके लिए मुल्ला बनना पड़ेगा, हो जनाब हलवे खा के मुल्ला बनना पड़ेगा, तो भाई इसकी जरूरत, इतना आसान है दीन माशाल्लाह, कितना आसान कि आप इंजीनियर बने डॉक्टर बने, लेकिन अल्लाह वाले इंजीनियर और अल्लाह वाले डॉक्टर बने। और मैं वल्लाह कहता हूं, जब आप खुद मुझे बताएं, जब कोई डॉक्टर दाढ़ी वाला नजर आता है तो आप उसके पास जाने को जो प्रेफर करते हैं कि यार ये दवा भी देगा दुआ भी देगा, ऐसे ही है ना। हाँ अलबत्ता इतना जरूर है कि नेक बनो तो किसी अल्लाह वाले के पास बैठो, ताकि दाढ़ी की आड़ में चोरी ना करो। इसलिए एक साहब ने हकीम उलुम्मत थानवी रहमतुल्लाह से कहा, एक तालिबे इल्म था उसने चोरी कर ली, तो हकीम उलुम्मत थानवी रहमतुल्लाह ने उससे कहा कि हजरत ये देखिए तालिबे इल्म भी चोर होते हैं। फरमाया तालिबे इल्म चोर नहीं होता, तालिबे इल्म चोर नहीं होता, चोर तालिबे इल्म बन गया। लिहाजा कोई दाढ़ी वाला अल्लाह वाला चोर नहीं होता, चोर अल्लाह वालों की शक्ल बना लेता है। वो इनकी शिकायत पता है, ये जो मुसलमान है हमारे, ये किसी और से धोखा नहीं खाएंगे, ये अल्लाह वालों की शक्ल से धोखा खाएंगे, इसलिए इनको धोखा देना अल्लाह वालों की शक्ल में। इसलिए चोर क्या करते हैं, अल्लाह वालों का हुलिया बना लेते हैं। तो शैतान और नफ्स, जब कोई आदमी दीन पे चलता है कहते हैं उसकी मुखालफत होती है, तो मुखालफत से घबराना नहीं चाहिए। आप लाहौर के एयरपोर्ट पर चले जाइए, जब हवा यूं चल रही होगी, यानी मिसाल ले लें कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ, क्योंकि सर्दी के जमाने में जो है वो हवा जो चल रही होती है वो ईस्ट की तरफ से यानी मशरिक की तरफ से चलती है, और गर्मी के जमाने में मगरिब की तरफ से हवा चलती है। तो आप जब देखें, जब हवा मगरिब से मशरिक चल रही होगी तो जहाज मशरिक से मगरिब उड़ेगा, यानी जहाज हमेशा उड़ता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, हवा के मुखालिफ उड़ता है। तो पता चला ये जो मुखालिफ हवा होती है ये हमें उड़ाने के लिए होती है। यानी लोग एतराज करेंगे, अरे मियां क्या तुम मुल्ला बन गए, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो तुम्हारी गुड्डी से खेलने की उम्र है, और तुमने अभी से दाढ़ी रख ली, तुम अभी से मुल्ला बन गए। अरे भाई अल्लाह वाला ही वही है कि जिसके बल्कि मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब कबूतर का बच्चा या किसी परिंदे का बच्चा होता है, तो जब बचपन ही से आप उसको देखें, उसका मुंह आसमान की तरफ होता है, बच्चा छोटा होगा मुंह आसमान की तरफ होगा, और वो ऐसे ऐसे बाजू हिलाएगा, क्यों, मुंतजिर होता है कि मुझे बाजू लगे और मैं फिजाओं में उड़ जाऊं। और भैंस का बच्चा और गाय का बच्चा, ये जितने जमीन पर रहने वाले जानवर हैं, वो आसमान की तरफ नहीं उठाते, बल्कि उनकी निगाह जमीन पर ही रहती है, क्योंकि उनको उड़ना नहीं है। लादा पता ये चला कि बचपन ही से अपने शुरू में बुलूगत ही के जमाने से, बल्कि बुलूगत से पहले किसी अल्लाह वाले से अगर ताल्लुक पैदा हो जाए, उसकी मजलिस में बैठे, तो वो शुरू ही से उसकी नजर आसमान पर होगी कि कब मैं अल्लाह वाला बनूंगा और अल्लाह ताला को राजी और खुश करूंगा। और रही बात दुनिया, मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया में जो आया उसको दुनिया जरूर मिलेगी, मुल्ला को भी मिलेगी, लेकिन जो आखिरत की तरफ बढ़ेगा उसको दुनिया जरूर मिलेगी। लेकिन जो दुनिया की तरफ जाएगा, मर्ज जरूरी नहीं है जो दुनिया वो मांगे वो उसको मिले, जो अल्लाह की मर्जी से मिलती है ना। अब एक आदमी चाहे मुझे आईफोन 6 मिल जाए या S5 मिल जाए या मुझे जो स्मार्ट कंप्यूटर मिल जाए, जरूरी तो नहीं उसे मिल जाए, या मुझे जो कैमरी गाड़ी मिल जाए, जरूरी तो नहीं उसे मिल जाए। हो सकता है उसको मोटरसाइकिल भी ऐसी मिले कि धक्का लगा के स्टार्ट करनी पड़े। एक जगह जो है बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे हुए थे और उन्होंने एक बहुत जबरदस्त मिसाइल पूरे जो है वो पूरी तमाम ममालिक ने मिलकर बनाया, उसमें पाकिस्तानी भी था साइंटिस्ट। अब अमेरिका वाले ने कहा कि भाई हम सुपर पावर है, मैं इसका बटन दबाऊंगा। अब बटन दबाया, मिसाइल जैसा उठा, फिर बैठ गया, बड़े परेशान। थोड़ी देर काम वाम किया, कुछ देखा, प्रोग्रामिंग चेक की, तो फिर तो बटन दबाया, फिर बैठ गया। फिर यूके वाले आए, जर्मन वाले आए, फ्रांस वाले आए, सब आए। पाकिस्तानी हर दफा बोलता था, सर प्लीज गिव मी अ चांस, प्लीज गिव मी अ चांस, एडवांस किए जा, मुझे भी तो कुछ करने का मौका दो। लेकिन उसको कहते हैं यू आर द डेवलपिंग कंट्रीज, वी आर डेवलप्ड कंट्रीज, तुम बैठो। जब सब थक गए, उसने कहा सर प्लीज मुझे भी एक मौका दीजिए। उसने कहा अच्छा भाई आ जाओ। उसने कहा कि कुछ लोगों को बुलाए। अब जब मिसाइल खड़ा हुआ था, उसने कहा मिसाइल को लिटा दे। मिसाइल को लिटाया, उसके बाद कहा इसको लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा इसको टर्न करें, इसको लेफ्ट साइड पर उल्टे हाथ की तरफ। उसने किया, उसने क्या किया, जैसे ही लेफ्ट साइड किया उसको ऐसे थपकी दी कुछ। उसने कहा अब इसको सीधा खड़ा करें, सीधा खड़ा किया, कहा अब बटन दबाए, बटन दबाए, शू करके मिसाइल उड़ गया। अरे सारे साइंटिस्ट, यार ये क्या थ्योरी है, क्या इसकी जो है वो रिसर्च है कि जो आपने काम किया। कहा सर रिसर्च क्या है, हम लोग लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मोटरसाइकिल पर जाते थे, जब गुजर रहे होते थे तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाता था, हम मोटरसाइकिल को उल्टी साइड पे लिटाते थे, उसको जरा सा थप्पी देते थे, उसके बाद किक मारते थे, मोटरसाइकिल चल पड़ती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मुखालिफ हवा उड़ाने के लिए होती है। जहाज हमेशा मुखालिफ स्ट्रीम पर उड़ता है, घबराना मत, ऐसा आएगा और कोई ना कोई एतराज भी करेगा। अल्लाह ताला अपने करम से किसी अल्लाह वाले का साया नसीब फरमा दे और हम सबको अल्लाह वाला बना दे, और अल्लाह ताला अपनी फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमा दे। वल्लाह दीन में जो इज्जत है, दीन में इज्जत है। कभी आपने किसी को सुना कि कोई आदमी ये दावा करे कि मैंने इतने बादशाहों की जूती उठाई है और मैंने इतने मालो दौलत वालों की जूती उठाई है, मैंने इतने वजीर आजमों की, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की जूती उठाई है, कभी ऐसा सुना भाई या किताबों में पढ़ा? लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो मिलेंगे कि हमने अल्लाह वालों की जूती उठाई है। तो पता चला अल्लाह वालों की इज्जत बहुत बड़ी चीज है। उनसे दुआएं लें, उनके पास बैठे, ताकि अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो। अल्लाह ताला अपने करम से इन गुजारिशात को कबूल फरमाए और हमको भी, बच्चों को भी, बच्चियों को भी, और हम सबको अल्लाह ताला अपनी फरमाबरदारी नसीब फरमाए। भाई और वालिद साहब, अच्छा, अल्लाह ताला अपने करम से हम सबको अपनी निस्बत और रूहानियत नसीब फरमा दे। आने वाले बच्चे वो अल्लाह वाले बन जाएं, बच्चियां भी अल्लाह वाली बन जाएं, और ये अल्लाह अपने करम से हम सबको भी, और ये जितने बच्चे और बच्चियां हैं, इनमें से किसी की कोई मुसीबत, कोई परेशानी है, उसको हल फरमा दीजिए। और ये अल्लाह अपने करम से किसी को कोई किसी की कोई परेशानी न रहने दीजिए, और अपने करम से गुनाहों की नहुसतों से हमें बचा लीजिए। खुसूसन ये जो मोबाइल के जरिए से, और जो जो बजाय इसके के पॉजिटिव और मुस्बत पहलू में इस्तेमाल हो, उसके बजाय गुनाह और नफरानी में हो, या अल्लाह अपने करम से उससे हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। और अल्लाह अपने करम से शरीयत और सुन्नत पर चलना हमारे लिए आसान फरमा, हमारे कामों को भी आसान फरमा दीजिए, हमारी पर इन बच्चों की बच्चियों की पढ़ाई में मदद फरमा दीजिए। और या अल्लाह ताला अगर किसी को जहनी तौर पर भी कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर फरमा दीजिए और खूब अच्छे नंबरों से कामयाब भी फरमा दीजिए। और या अल्लाह हम सबको, हमारे वालदैन को, बड़ों को आफियत नसीब फरमा दीजिए, हमारे घर वाले, हमको, हमारे घर वालों को, और जुमला मरीजों को शिफा अता फरमा दीजिए। हमारे मौलाना आसिफ साहब के जो वालिद साहब और भाई इंतकाल फरमा गए, या अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफरत फरमा, दरजात को बुलंद फरमा, रहमत नादिल फरमा। और हमारे भी जो प्यारे दुनिया से जा चुके हैं, उन पर करोड़ों करोड़ों रहमत नादिल फरमा दीजिए। और या अल्लाह ताला अपने करम से हमारी दुनिया भी बना दीजिए, आखरत भी बना दीजिए, 100% हमको दीन पर चलने वाला बना दीजिए, और दुनिया के किसी काम में हमें किसी का मोहताज न बनाइए, और शरीयत और सुन्नत पर चलने वाला बना दीजिए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।